नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने आम जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने को मंजूरी दी। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने के फैसले पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। राजद ने कहा, ये समाजवादियों की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऑडियो विजुअल और इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का कल मुंबई में उद्घाटन करेंगे। और 4 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को इस अहम निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि जाति जनगणना का कार्य आम जनगणना के साथ कराया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों तक सरकार की योजनाओं का लाभ उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पहुंचाना है।
कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहाँ कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। श्री कुमार ने कहा कि जाति जनगणना कराने की हम लोगों की पुरानी मांग है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने पोस्ट में इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति गणना से देश के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन तथा धन्यवाद किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जाति जनगणना के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे देश को एक प्रमाणिक आंकड़ा मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इससे गरीब जातियों को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी।
जातीय जनगणना का सबसे ज्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। मुझे लगता है इसके होने से हर व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और देश 2047 में जब विकसित भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस दिशा में उसकी नींव को मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत और महत्वपूर्ण।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस कदम से सभी जातियों के लिए नीतियां बनाने और उसे लागू करने में मदद मिलेगी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जाति जनगणना का निर्णय उन लोगों को करारा जवाब है जो राष्ट्रीय जनता दल को जातिवादी कहते थे। इधर राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा बनाने की घोषणा हमारे पूर्वजों तथा समाजवादियों की जीत है।
ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी, तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी।
जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इससे कल्याणकारी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।
केंद्र की एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, यह स्वागत योग्य कदम है। और बिहार में एनडीए की सरकार ने जाति सर्वे का फैसला लिया था, वह देश के लिए एक नजीर बना था। इसलिए बदलते हुए समाज, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में हो रहे बदलाव, इस संबंध में अगर जातिगत जनगणना होगी तो कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में एक नई पहल होगी, तो केंद्र सरकार को इस बात के लिए बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक फैसला लिया गया है।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले ने उन लोगों को सबक दिया है जो जातीय जनगणना का राग तो अलापते रहे, लेकिन दशकों तक सत्ता में बने रहने के बावजूद कुछ नहीं किया। जन स्वराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर ने कहा कि जाति जनगणना कराने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। श्री किशोर ने कहा कि सरकार को इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक अन्य फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये बेंचमार्क कीमत है जिसके नीचे गन्ने की खरीदारी नहीं की जा सकती है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमलों में लोगों की शहादत से पूरे देश में एक नई चेतना पैदा हुई है। श्री खान ने आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ नतीजे वाली कार्रवाई होगी।
ये तो ऐसा दुख है, इसे शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनसे कहा भाई हम आपका दुख नहीं तो कम हो नहीं सकता, हम आपके दुख में शरीक हैं और मैं शरीक नहीं हूँ, पूरा देश शरीक है इस दुख में। लेकिन ये जो शहादत है इसने पूरे देश में एक नई चेतना पैदा करी और मुझे विश्वास है कि इस शहादत के नतीजे में वो अब कार्रवाई होगी कि आतंकवाद का सफाया होगा और फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का कल मुंबई में उद्घाटन करेंगे। 4 दिन के इस सम्मेलन का मुख्य विषय है रचनाकारों को और विभिन्न देशों को साथ में जोड़ना। इसमें विश्व भर के क्रिएटर और स्टार्टअप, उद्योग प्रमुख और नीति निर्माता शामिल होंगे। ये सम्मेलन श्रव्य, दृश्य तथा मनोरंजन उद्योग के भविष्य के बारे में चर्चा के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। बिहार की मेजबानी में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह को लेकर कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। 4 मई को पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में भव्य समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया इसका उद्घाटन करेंगे। सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
बिहार की मेजबानी में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर राज्य में खेल प्रेमियों के बीच उत्साह का वातावरण है। 4 मई को रंगारंग उद्घाटन समारोह होगा। इसमें जाने माने खिलाड़ियों के साथ फिल्मी और कला जगत कलाकार भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह का आयोजन संध्या 6 बजे पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा। समारोह में खिलाड़ियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश भी प्रसारित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स राष्ट्रीय खेलों के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। उद्घाटन समारोह में कई नामी गिरामी कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देंगे। बिहार के निवासी और जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आकर्षक प्रकाश सज्जा और बिहार के बारे में प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। 15 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से 8,500 से अधिक खिलाड़ी और 1,500 से अधिक ऑफिशियल हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में 28 अलग अलग प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धाएं होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया में खेल आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने गया के बिपार्ड में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने अत्याधुनिक स्विमिंग पूल और ओपन एयर थिएटर का भी उद्घाटन किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में आज भी आंधी, बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार समेत 4 राज्यों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और बीएलओ का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्वाचन आयोग की आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। ये प्रशिक्षण बीएलओ को मतदाता पंजीकरण, फॉर्म हैंडलिंग और अन्य चुनावी प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में दक्षता हासिल करने में मदद करेगा। अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी प्रदर्शन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पटना जिले के पंडारक थाना क्षेत्र अंतर्गत मेकरा दियारा क्षेत्र में एसटीएफ और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब 40 राउंड गोलियां चली हैं। पकड़े गए अपराधियों के पास से दो राइफल, देसी पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है। अक्षय तृतीया का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस तिथि को काफी शुभ माना जाता है। इस अवसर पर लोग पवित्र नदियों और जलाशयों में पवित्र स्नान कर दान पुण्य करते हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान किया। हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया है कि जिले में गंगा नदी के कष्टहरणी घाट, बबुआ घाट और सोझी घाट पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ लगी रही। वहीं बक्सर के रामरेखा घाट पर बड़ी संख्या में गंगा नदी में लोगों ने पवित्र स्नान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मानवता को समर्पित यह त्योहार सभी के लिए सफलता, समृद्धि और खुशी लेकर आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह अवसर विकसित भारत के निर्माण की सामूहिक प्रतिबद्धता में पुनः शक्ति प्रदान करेगा। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ICSE की 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। 10वीं में 99.37% के साथ छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 12वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 12वीं की परीक्षा में 99.45% छात्राएं पास हुई हैं। विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर अपने परिणाम देख सकते हैं। आज बाल श्रम उन्मूलन दिवस है। बाल श्रम के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शेखपुरा में बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। उप विकास आयुक्त संजय कुमार ने झंडे दिखाकर रैली को रवाना किया। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यवसायी दीपू कुमार की हत्या के विरोध में आज व्यापारियों ने फुलकाहा बाजार बंद रखा। स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों ने इसके खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भी किया। सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के तित्रा से पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर के कैलाश सभागार में पूर्व विधान पार्षद स्वर्गीय हरि नारायण चौधरी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने आम जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने को मंजूरी दी। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने के फैसले पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। राजद ने कहा ये समाजवादियों की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का कल मुंबई में उद्घाटन करेंगे। और 4 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।